नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एवियां में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नव प्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।